से इसको ना सुनाए। आजकल जैसे सदफ बीमारी की वजह से नहीं आ रही, तो मुझे फील हुआ कि मैंने अपने तरफ से ये सोचा कि इन बच्चियों को एक लाइवली टच मिले और क्लास में या अनअटेंडेड ना फील करें, तो आपके सामने इनको रोज़ हम बुलाते हैं ना, लेकिन यकीन करें कि इनका फीडबैक जो आता है ना वो मुझे मोटिवेट करता है। इसमें से मैं एक पढ़ के सुनाती हूँ आपको खत, ये जो हमने परसों किया था यानी कल से पिछला सेशन है जन्नत का रास्ता, तो मैं पढ़ के सुना ही देती हूँ आपको। ये एक स्टूडेंट हैं, उनका मैसेज है, कहती हैं कि आज के तरबियती सेशन में जीत का रास्ता, इसने मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया। ज़िंदगी के बारे में जो चार सवाल पूछे गए थे उन्होंने मुझे अपना मकसद मुतय्यन करने में बहुत आसानी की। जिस दिन से मैं कुरान पाक से जुड़ी उस दिन से लेकर आज तक और इंशाल्लाह आने वाली तमाम ज़िंदगी में मैं अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे ज़ाया ना करना, मुझसे नेकी के काम ले और मुझे दाई दीन बना, मुझे और मेरी औलाद को दीन के लिए चुन ले और मुझे अपने खास बंदों में बना, आमीन। और मैं अल्लाह की खातिर कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हूँ। आपको समझ आ रहा होगा, ये सारे जुमले उसके अंदर थे जो उन्होंने अपने लिए पिक किए हैं, कि मैं अल्लाह की खातिर कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक मिशन या गोल है कि मैं अपने आप को बदलूँ, अपनी औलाद की तरबियत करूँ और इन सब का मिशन और गोल एक कर दूँ। और वो ये उस दिन ये बात हुई थी ना, जब आप में से किसी ने सवाल किया था साथियों में कि औलाद को किधर ले जाएं और मियाँ को किधर, बल्कि घर से सदफ ने ये सवाल पूछा था, मुझे याद है, कि जब हमारे मिशन और बच्चों और शौहर के तकाजों में क्लैश हो तो क्या करें। तो मैंने उसका ये जवाब दिया था जो इन्होंने लिखा है, कि उनका भी वही गोल बना दें, वही मिशन जो आपका है वही उनका बना दें, तो इंशाल्लाह वो आपके साथी बनेंगे। तो ये लिखती हैं कि मैंने कहा है कि अपने आप को बदलूं, अपनी औलाद की तरबियत करूं और इन सब का मिशन और गोल एक कर दूं, और वो कि हमारे मुआशरे में से जहालत, हमारा मुआशरा जिस जहालत की ज़िंदगी गुजार रहा है, इस मुआशरे तक इन लोगों तक अल्लाह की किताब पहुंचाऊं और हमारे मुल्क पाकिस्तान में अभी तक लोग इस नूर और इस रोशनी से दूर हैं। मैं अपने मुल्क जाकर अपने लोगों तक ये पैगाम आम करना चाहती हूं और आज मुझे अपनी सोच की कतार तब्दील करने पर बहुत खुशी हासिल हुई। था उसमें कतार बदलने का टॉपिक, वही इन्होंने लिखा है, अल्लाह की राह में टूटी फूटी नेकियां नहीं करनी है, आमीन। मैंने अपने जज्बों को बुलंद करना है और इन जज्बों की तकमील के लिए अपने रब से सब्र और नमाज से मदद चाहनी है, आमीन। तरबियती सेशन बहुत ज़बरदस्त है, हमारा किरदार बुलंद करने के लिए जज़ाकअल्लाह खैर, और नीचे उन्होंने अपना नाम लिखा है। अब आप देखिए कि एक बच्ची और किसी और एक का था, वो कह रही है कि मुझे इस, और कितने दिनों में इनको आए हुए, जुमा जुमा 8 दिन जिसको अपनी ज़बानें कहते हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि हमें गोल मिल गया ज़िंदगी का। तो याद रखिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें कोई बंदा भी सुनता है ना, ये उसको अपने लिए बेहतर मिलती हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आप पूरी फोकस होकर और पूरी डेडिकेशन के साथ इनको सुने, और अगर आप अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे तो आपको ये बातें बेकार लगेंगी। तो कितने लोग हैं वो सोचते हैं कि हमने अपनी कमियों को पूरा करना, फिर इसको तो बैठ के सुनना होता है। ये चीज़ें जो है कानों में पड़ती समझ नहीं आती। तो आइए ज़रा हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, पैगाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अपनी शख्सियत को बेहतर करने के लिए, अपने अंदर एतमाद पैदा करने, कामयाबियों के रास्ते हमवार करने और खुशहाल ज़िंदगी में कदम रखने के लिए आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है पैगाम। हम सब अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसको हम देखेंगे। ख्वाब, एक बड़ा सा लफ्ज़ लिख लीजिए अपने नोट्स में, ख्वाब। सर उठा के जियो का पैगाम सदियों की मुसाफत तय करता हुआ मेरे जहन के दरीचों में पड़ाव डाल चुका था। यानी ये कहते हैं कि ये किताब लिखना या ये मौजू चूज़ करना ये कोई मेरा अचानक फ़ैसला नहीं है, कई सालों से मैं ये इरादा रखता था कि मैं इस तरह की करेक्टर बिल्डिंग की कोई बात करूं। मुझे एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि ये पैगाम कोई आम पैगाम नहीं है, इस पैगाम को आम करना भी कोई मामूली काम नहीं हो सकता। सर उठा के जीने की तरगीब, हौसला और तालीम देना तो किसी मुझ जैसे की निजात का सबब भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी इन टिप्स को सुनकर अगर किसी की ज़िंदगी में कामयाबी आती है तो हम उसकी नेकी में शामिल हो जाएंगे, हमारे अंदर भी वही इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें भी वही अजर देगा उसका। सर उठा के जीने का ढंग सिखाने के लिए खुद का सर उठा हुआ होना ज़रूरी है। लिखिए ज़रा इसको, आप चाहते हैं कि दूसरों को आप सिखाएं, कि वो सर उठा के जिए, आपके बच्चे, आपके कोऑर्डिनेटर्स, आपके कोलीग्स, कोई भी, तो फिर आप खुद पहले सीखिए कि सर उठा के कैसे जीते हैं। क्या मुझे इस बात की जसारत भी करनी चाहिए कि मैं दूसरों को सर उठा के जीने की रग़बत दिलाऊं? क्या मुझे इस बात का हक हासिल है? ये हक मुझे किसने दिया? क्या मुझे ये जुरत करनी चाहिए? यानी ये सारी खुद गुलामियाँ हैं कि जब हम दूसरों को सिखा रहे हैं कि सर उठा के जियो, तो क्या मैं इसका हक है? क्या मैं इस काबिल हूँ कि सिखाऊँ? तो ये जुर्रत करना छोटी बात नहीं है कि आप दूसरों की करेक्टर बिल्डिंग करें, क्योंकि आपको अपनी पहले करनी पड़ती है। शायद ज़रूर, क्योंकि जुर्रत ही एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी पकड़ मेरे हाथ नहीं आती रही। जुर्रत ही की तो ज़िंदगी में कमी रही है। कितने ही मौके आए जहाँ महज जुर्रत चाहिए थी, लेकिन जुर्रत ना कर पाया और अपना मेरा अपना सर ही झुका रहा। तो लिखिए फिर आज का हमारा थीम क्या है, कि हमने अपने अंदर जुर्रत पैदा करनी है। देखिए, रिस्क लेकर ही काम होता है। अगर बच्चा रिस्क ना ले तो कभी ना चले। माँ कभी अपने पे अपनी गोद से बच्चे को उतरने ना दे, खड़ा हो जाए तो चलने ना दे, चलने लगे तो उसके हाथ से स्टिक कभी ना हटाए। लेकिन ये माएँ जुरत करती हैं ना, चलते हैं, गिरते हैं, चोटें लगती हैं, फिर सीधा चलना सीख लेते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में जुरत की कमी होती है। मैं इसको कैसे समझती हूँ? अनदेखे अंदेशे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हाय क्या होगा, हाय लोग बातें करेंगे, हाय मियाँ शादी दूसरी कर लेंगे, हाय बच्चे छोड़ देंगे। तो बहुत सारे लोगों की शख्सियत में जुर्रत की कमी होती है। और आप करके देख लें, जुर्रत के बगैर काम होता ही नहीं है। कल किसी का मुझे कोई जुमला याद आ रहा है, मुझे याद नहीं कि किस मौके पे हुआ था, लेकिन किसी भी जगह, किसी जगह क्लास सेशन में ये बात हुई होगी कि नहीं, मुझे डर लगता है फिर मेरे बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, या बच्ची को मैं इसलिए नहीं मना करती कि मेरी बच्ची नाराज़ ना हो। तो मैंने उस बन को ये समझाया कि देखिए, आप ये चेक कीजिए कि जो आप बात कर रही हैं वो ठीक है कि नहीं। अगर आपको होता ना कि आपकी बात ठीक है, तो आपकी बच्ची कभी नाराज़ नहीं होगी। बच्चे या बड़े हर उस बात पे बुरा मना सकते हैं कि जो गलत हो, लेकिन आप में जुर्रत होनी चाहिए। आपके बच्चे क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, आप में जुर्रत होनी चाहिए उनको टोकने की। इसी तरह साथी हैं, कोई भी हैं, जिसको भी आप चेक कर रहे हैं, आप जुर्रत से बात करें, वरना तो बेकार है। मिसाल देती हूँ कि मुझे पता भी चल गया कि खाने में इस चीज़ की कमी है, लेकिन मैं कहती नहीं, मैं जुर्रत नहीं कर रही कि इनको बताऊँ, फिर ये माइंड कर जाएंगी। तो फिर आपके उसके ऊपर नज़र रखने का मकसद क्या है? तो लीडरशिप क्वालिटीज़ लाने के लिए आपके अंदर जुर्रत होनी चाहिए। ये लिखते हैं कि कॉलेज का पहला दिन हो या यूनिवर्सिटी की तारीफी क्लास, मैं सर झुका के जियो के नारे पर ही अमल पैरा रहा। यानी आप ये अपनी इब्तदाई ज़िंदगी बताते हैं कि मेरे अंदर जुर्रत नहीं थी और मेरी शख्सियत बहुत दबी हुई थी। नौकरी के लिए किसी कंपनी में इंटरव्यू में बैठा हूँ या किसी प्रोफेशनल मीटिंग में, सर था कि कभी उठने का नाम ही नहीं लेता था। शर्मीलापन, खुद एतमादी की कमी, इज्जत नफ्स का कहत, खुद से नफरत, अपनी शक्लो सूरत से वाबस्ता, खुदकुश ख्यालात, अजियत नाक सोचें, खुद तनकीदी की भरमार और जहरीले लफ्ज़ों के वार, इतने ताकतवर दुश्मनों के होते हुए सर उठाने की जुरत मुझसे कभी हो ही ना पाई। चलिए, ये सारी बातें आप खुद अपने आप से पूछें। पहली चीज़ जो आप इस वक्त अपने से पूछेंगे वो क्या है? क्या मेरी शख्सियत दबी हुई है? और मैं सच बताऊं कि हमारे मुल्कों में से आने वाले लोग, मैं ये नहीं बात करती कि आपको यहाँ आए 20 साल हो गए और आपने सीख लिया, लेकिन आम तौर पे औरतों को दबा के रखते हैं। ये सच है कि नहीं है? सोच भी ऐसी है, बस दफ़ा हम उभर ही नहीं पाते, दबा दिया जाता है। औरतें नहीं बोलती, बच्चियां नहीं बोलती, और बीवी नहीं बोलती, और बहू नहीं बोलती, और क्या कहते हैं इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं ना, तो बास दफ़ा हमारे अंदर ये जुर्रत ही नहीं होती कि हम कभी कोई अच्छा काम कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए ज़रूरत क्या है कि हम देखें। अब एक औरत ऐसी हो ना तो बात समझ आती है। मैंने एक ज़िंदगी में बहुत करीब से औरत को देखा है। जब उसकी शादी हुई तो वो अकेले बेटे की बहू बनी, समझ रहे हैं? कई बहनें होंगी तो बेटा एक ही था। तो अब शुरू में क्या होने लगा कि हर बात पे तनकीद, हर बात पे रोब, ये भी करना है वो भी करना है, खुद इधर उधर घूमने चले गए। जब घर आए बीवी बहू ने खाना भी बना दिया, सब कर भी दिया, तो आके एक तनकीद भी सास ने की होगी तो एक नन ने की। ये रियल स्टोरी है मेरे पास। तो आखिर हुआ क्या कि वो दुखी रहने लग गई, और करना भी और आके कहना ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतने हालात बिगड़े उनके कि जारी बात है। फिर बेटे तक बात, बेटे में यही बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एक बेटे के माँ, एक बेटे वाले का कि जी मैं एक ही हूँ, मैं अपनी माँ को दुखी नहीं कर सकता, मेरे बगैर इनका कोई नहीं। घर टूटने के करीब हो गया, बिल्कुल करीब था कि वो तलाक हो जाए। वो लड़की कहने लगी कि मैं तो मर जाऊंगी, ये तो मुझे ऐसे करेंगे वो है। फिर किसी भी तरह अल्लाह ताला ने उनको जो रास्ता दिखाया, और उसके बाद वो घर बिल्कुल ठीक बसा। वजह क्या हुई? आपने काम किया ना, सब घर में नीते के आटा धो के उन देना, बर्तन धोना, ये करना वो करना, ये किया। अब घर वाले जब आए तो उनको कदरदानी करनी चाहिए ना कि ये शुक्र है बेटा आपने किया, कुछ नहीं भी तो बताया जा सकता ऐसा नहीं वैसा। जब नतीजा उलट हो तो क्या हुआ? अब वो कहती है कि मैंने बस एक ही चीज़ सीखी, जुरत सीखी, ऐसे धोते हैं बर्तन, ये कर दिया वो कर दिया। तो खड़े होकर कहा अम्मी जी मुझे तो ऐसे ही आते हैं, और ये कह के अंदर चले। और कभी अम्मी जी ने कह दिया ना खबरदार तुमने ये काम किया, तुम्हें नहीं करना आता, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अब अम्मी जी ने तो ये बात ऐसी कह दी ना, अगले दिन जब घर आई तो बहू ने वो काम ही नहीं किया। ये क्यों नहीं किया? अम्मी जी आपने तो कहा था कि तुम्हें नहीं आता, तो मैं कैसे करती, आपने मुझे मना कर दी। अब अम्मी जी को जब खाना पकाना पड़ा तो अम्मी जी को समझ आ गई। बस एक हफ्ते 15 दिन कह लें, 1 महीने की एक्टिविटी से सब ठीक हो गए, वही सब अच्छी हो गई, क्योंकि उसने सच में बात की। मैं नहीं कहती बदतमीजी करें, मैं नहीं कहती गुस्सा करें, पाँव पटखें, लेकिन जुरत पैदा करें। फितरत का असूल है कि जो जितना दबता है उसको लोग उतना दबाते हैं। आप स्प्रिंग को देखें, आप जब उसको प्रेस करेंगे ना तो आप और प्रेस करते जाएंगे, लेकिन जूं ही प्रेस किए हुए स्प्रिंग को आप छोड़ेंगे वो उतना ही खुलेगा। तो लिहाजा अपनी पर्सनैलिटीज़ में अच्छी जुरत लाएं। मैं कहती हूँ बच्चियों की तरबियत में अगर ये नुक्ता डाल दिया जाए तो कभी वो कुड़कुड़ कर ना मरें और ना बोल्ड। हमने दो तरह के किरदार बना लिए अपनी ज़िंदगी में, एक बहुत ही बोल्ड बिल्कुल ब्लंट किस्म के, और दूसरे बिल्कुल दबे हुए। तो जुरत अंदर आती है ना तो इंसान बात कर सकता है। आप मुझे बताइए मैंने क्या गलत किया, आप मुझे बताइए मैंने कैसे किया। बस आपकी सच्ची बात को फिर अगला रिजेक्ट नहीं कर सकता। कई ऐसी कहानियां हो सकती हैं, तो जुर्रत बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये कहते हैं कि मैं एक वक्त तक बिल्कुल दबा हुआ था, मेरी पर्सनैलिटी जो थी वो आप कह सकते हैं क्रश्ड पर्सनैलिटी थी। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन आया, फैसले का दिन, कर दिखाने का दिन, खुद सेहत निभाने का दिन, और मैंने तय कर लिया कि सर उठा के जीना है। मैंने ठान ली कि घुटनों के बल रींगते हुए जिंदगी नहीं कायम करनी, जिंदगी नहीं गुजारनी। मैंने इन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाया जिन्होंने सर उठा के जीने की जाविदा मिसालें कायम की, यानी ख़त्म ना होने वाली मिसाल। इनमें बहुत सारी मिसालें सहाबे कराम की थी जिन्होंने फिस्को फजूर के सामने सर झुकाने की बजाय सर उठाने की राह चुन ली, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने जान की कीमत जानने के बाद भी जान अल्लाह के रास्ते में दी। यानी कुछ चीज़ें जिसको हम समझना चाहेंगे कि जब मुश्किलात आई तो उन्होंने अपने सर कटा दिए, झुकाए नहीं, और उन्होंने पूरी पूरी कीमत चुकाई, घबराए नहीं अपने मौक़फ़ से। मौक़फ़ किसको कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में किसको कहते हैं मौक़फ़? पॉइंट ऑफ द व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जैसे हम उर्दू में कहें कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटे, हदफ से नहीं फिरे। हदफ किसको कहते हैं? टारगेट, अपने टारगेट से वो पीछे नहीं हटे। सर झुका के जीने वाले करोड़ों इंसानों के लिए उम्मीद का आफ्ताब बनकर चमके, और सारी कायनात को बता दिया कि अपने पाँव पे खड़े हो के मर जाना घुटनों के बल जिंदा रहने से बेहतर है। लिखिए, अपने पाँव पे खड़े हो के मर जाना घुटनों के बल जिंदा रहने से बेहतर है। सर उठा के मर जाना कबूल है, सर झुका के जिंदा रहना मंजूर नहीं है। तो लोगों को ये सिखाइए कि हम सीने में तीर खा सकते हैं लेकिन किसी दूसरे के सामने झुक नहीं सकते। सर झुका के जीते रहने की 1000 वजूहात पे सर उठा के जीने की एक वजह भारी होती है। सर झुका के जीने की क्या वजूहत होती है? अमूमन कोई बताए, मैं फिर समझूं कि आप के लेवल से ऊंची बातें तो नहीं हो रही। जी बताइए, अमूमन लोग क्यों सर झुका के जीते हैं? वजूहात क्या देते हैं? रीजनिंग क्या होती है? शाबाश जी।
मुझे जो लगता है ना, उसमें कोई ना कोई कंप्रोमाइजिंग पहलू होता है बाज़ुकात, तो और कुछ कमजोरियां अपनी भी होती हैं इंसान की।
कमजोरियां या कॉम्प्रोमाइज, और कैसे समझे आप इसको जी? अम्मे हबीबा
पर्सनैलिटी का भी
जी, आप फरह
अपनी शख्सियत पे है, मतलब कि काम
जी,
सेल्फ
आप बताइए।
रियलाइजेशन के लिए उन्हें अपने आप पे प्रॉपर यकीन होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे यानी उसका हक है। ये सब झुकाव
देखिए, मैं जी जब लफ्ज़ कहती हूँ ना, सर झुका के जी, वैसे दुनिया की तो बहुत मिसालें हैं, लेकिन हमने तो औरतों की लेनी है ना। तो मेरे जहन में एक बड़ी बीबी, मस्कीन सी ऐसी बहू आती है कि जिस पे आके हर बंदा रोब डालता है। हमारे कल्चर में, यहाँ का तो मुझे नहीं पता यहाँ करता कौन है और सहता कौन है, लेकिन अमूमन जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं या पाकिस्तान का माहौल होता है, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं? बच्चियाँ नहीं बोलती माफ़ी मांगो, हाथ जोड़ो, ये करो, यानी सर झुकाने की क्या वजूहत है? नहीं 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 बच्चे नहीं बोलते, नहीं घर जोड़ो, फिर सास नाराज़ हो जाएगी, फिर ससुर नाराज़ हो जाएगा, फिर मियाँ तक बात पहुँच जाएगी, फिर तुम्हारे माँ बाप को कह देंगे, फिर महकमे में बात जाएगी, ये वजूहत है। यानी जब लोग आपको सर झुकाने पर माइल करते हैं, तो उसके पीछे रीजन्स क्या होती हैं कि आपके बोलने से पता नहीं कितना फितना हो जाएगा, आपके सर उठाने से ये होगा। एक ये भी बड़ा खौफ होता है, लोग कहेंगे ये बहुत बोलती हैं, लोग कहेंगे इनको अपना हक लेना आता है। यानी हम मजलूम बन के जीना चाहते हैं और दूसरे को जालिम बना देते हैं। लिख लें ये बात, अल्लाह ना तो जालिम बनने का हुक्म देता है ना मजलूम। तो जो सर झुका के जीते हैं ना, वो मजलूम बन जाते हैं, तो दूसरे को जुल्म का मौका देते हैं। फितरत का असूल है कि जब जो कोई दबेगा, कहते हैं ना कि पानी भी नीचे वाली जगह पे ही आता है, इंक्लाइंड होता है ना, तो पानी ऊपर से आ रहा है ना, तो नीचे जमा होगा। तो जो बंदा नीचे झुकता है ना, फिर सब उस पर रोब डालते हैं। आप अपने घरों में देखें, आपके बच्चों में कोई बहुत शरीफ होता है, तो आप देखें हमेशा कसर उसको ही लगती है। आपके साथियों में कोई शरीफ होता है, हर एक का काम उसको ही करना पड़ता है, क्योंकि इसने तो ना ही नहीं करनी। इसको दिन को भी कहेंगे तो कर देगा, इसको शाम को भी कहेंगे तो कर देगा, रात को कहेंगे कर देगा। और एक बंदा जिसे आपको उम्मीद ही नहीं, आप कहेंगे ये काम कर दे, सॉरी जी ये मेरा काम नहीं, जो सॉरी जी ये मैं नहीं कर सकती, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो दोबारा आप उसको नहीं कहते ना जी। अब आप बताइए फरह, आपने हाथ खड़ा किया था
जी।
जी
मैं ये चाहूंगी कि जैसे कि काफी मैंने अपना कोशिश भी की है कि अगर दूसरे को बताने की ये ठीक नहीं है तो पर वो उल्टा ही पड़ता है,
नहीं,
तो
फिर आप डिसाइड करें। देखिए मैं आपको मिसाल देती हूँ, एक काउंसलिंग के लिए एक बच्ची मेरे पास आई, बच्ची नहीं औरत थी, 3-4 बच्चों की माँ थी, और इंतहाई तकलीफ में रोती, शक्कर आंसू उसके उतर नहीं रहे थे। क्या हुआ है? खुलासा कलाम जो भी ऐसे हालात में होता है कि मियाँ को आदत है गाली देने की, मियाँ का हाथ उठता है, और अब मैं बर्दाश्त करते थक गई और मैं घर से आ गई हूँ। अब मिसाल है कि ये कहानी किसी की भी हो, ये सच्ची कहानी है, लेकिन आपको सच्ची ना भी लगे आप सपोज कर लीजिए। अब एक औरत आपको कहती है कि आज मेरी हद ख़त्म हो गई है, मैं घर छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि मैं अपने मियाँ की बातें सुन के थक गई, मैं उसकी मार खा के उसकी बातें, तो अब जब उसने कहा कि छोड़ दो मुझे, तो मैं छोड़ आई हूँ। अब ये उसकी बात है, तो अब वो अपना इसका हल चाहती है। क्या हुआ? मैंने कहा आप क्या हुआ, आपने देर क्यों की, अब क्या हुआ, क्या है, आप कितने साल शादी के हुए? जो भी हालात हुए, हम सपोज कर लेते हैं किसी की शादी को 15 साल हो गए और एक दिन वो आ गई। मैंने कहा अब आपका इशू क्या है? तो उसने कहा कि बदतमीजी सहते सहते अब मैं बदतमीज हो गई हूँ, जो गालियाँ मेरा मियाँ देता है मैं उसको अब देती हूँ, तो बात पड़ती है। और अब मैं उसको कहती हूँ कि अब मैं तुम्हारे से नहीं दबूंगी, नहीं डरूंगी। नुकसान क्या हुआ? इतनी देर बाद क्यों आई आप? आपने पहले और शादी से पहले लड़ाइयाँ शुरू, शादी वाले दिन गाड़ी में बैठते ही उसकी मेंटेलिटी खुल गई। आपने क्यों अपनी बच्ची को इतना रोगी किया? माँ बाप, ये माँ बाप मुजरिम है। ऐसे माँ बाप अपनी बच्चियों को अगर ये कहते हैं अच्छा चुप कर, जो शराबी है, जानी है, पापी है, ख़राब है कोई, तो फिर वो जुल्म करते हैं। मैंने कहा आज जिस तरह आप घर छोड़ के आई हैं ना, अगर आप शादी के 1 महीने बाद आपको यकीन हो गया था ना, तो आप जाती तो आप अकेली जाती, और वो कहती मुझे अपने बच्चे भी नहीं लेने, वो भी बाप की कॉपी है, वो रखे उसको, और अब बाप की जान पे बनी हो बच्चों को लेके कैसे जिए? समझ आ रही है बात आपको? एक हद होती है, इससे पहले कि वो हद टूटे और आप फिर और बदतमीज हो, वक्त के साथ साथ यस नो यस नो। अल्लाह के नबी ने कहा कि जालिम और मजलूम की मदद करो। कहा अल्लाह के नबी मजलूम की मदद तो बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि उसको रोकें या उसकी मदद करें, तो जालिम की मदद क्या? कहा उसका हाथ पकड़ो। अब एक औरत जब अपने मर्द की गाली खाती है, और पढ़ी लिखी औरत थी, मैंने कहा आप आगे क्या सोचती? कहती मैंने इसको अदालतों के चक्कर लगवाने हैं, अब मैं इसको दिखाती हूँ क्या मजा चुकाती। मुझे उसकी आवाज़ों से लग रहा था वो गुर्रा रही है, क्योंकि उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। तो आप अपने मर्द की गाली खाते हैं ना, तो पहली गाली पे रुक जाएं, खड़े हो जाएं। क्या कहा आपने? आइंदा ना कहिएगा, मैं नहीं सुनूंगी आपकी गाली। खामोश, प्यार से उसके बाद फिर लाड करें, भूल जाएं, फिर खाना दें कुछ, बस एक इशारा करके ना खामोश। और अगर आपने एक दिन सुन के फिर का लाड़ आ जाए, कोई बात नहीं, मुझे तो आप जो कह ले मैं सुनूंगी, मेरे तो माँ बाप ने यही सबक पढ़ा। गलत करते हैं हम, ये यहाँ हम सीख रहे हैं। जब आप गलत चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो आपको हर कदम पे करना पड़ेगा। जब आप लोगों को गलत कादी कर दें तो आपकी आपकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी होती है। हमारी सोसाइटी में 80% लोगों औरतों के साथ यही होता है, या फिर बीमार हो जाती हैं, या फिर शुगर पेशेंट हैं, या दिल की मरीज़ा हो गई, कुछ भी, क्या कहते हैं जी, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं रही, अब हम थक गए हैं। तो भाई पहले ही कर लो, निप द इवल इन द बर्ड, रहो तो इज्जत से रहो, छोड़ो तो इज्जत से छोड़ो। हम बेइज्जती करा के रहते हैं और फिर बेइज्जती करके छोड़ते हैं। अल्लाह ने दुनिया में हर चीज़ को जीने का हक दिया, गुलामी नहीं पसंदीदा। तो ये तो अब हमने एक घरेलू मिसालें क्यों ली, क्योंकि हम ख्वातीन हैं। आप इसको इम्प्लाई और इम्प्लायर में ले लें। एक इम्प्लाई है, उसको मालिक जब वो बदतमीजी से बात करता है, छोड़ दीजिए, बात करें अच्छी तरह से, मैसेज कन्वे करें, लेकिन उनको बताएं कि मैं आपकी गलत नहीं सुनूंगी। चलिए इसकी एक मिसाल आप अपने बच्चों से ले लीजिए। मैं देखती हूँ कि बास माएँ अपने बच्चों के हाथों बेबस हो चुकी होती हैं। एक दिन बच्चे ने कुछ कहा, माँ ने बर्दाश्त कर लिया, फिर उसके प्यार किए, लाड़ किए, उसको खाना दिया, नाश्ता दिया। दूसरी दफ़ा फिर बच्चे ने बदतमीज़ी की, तो आपने खुद मौका दिया कि वो तीसरी दफ़ा भी आपके साथ बदतमीज़ी करें। किसी इंसान की गलत ना सुननी है ना उससे करनी है। ला दरर वला दरार, दो लफ्ज़ों की हदीस है, ना जरर दो ना बचाओ। इस्लाम का हुसन ही ये है। तो ये जो हमारी क्रश्ड पर्सनैलिटीज़ है ना मुसलमानों की, इससे आज यूनिवर्सल लेवल पे भी एक इमेज बना ली है। मुसलमान है, चलो दबी जाएगा, चलो इसको जो मर्जी करे, इसको बात कर दो बैठ जाएगा। क्यों भाई, मुसलमान का मतलब कोई बेवकूफ़ होता है? तो आप देखेंगे कि जब फर्द के लेवल पर इज्जत नफ्स हमारी आएगी ना, तो इंशाल्लाह उम्मत के नाते से भी हम कभी भी किसी की गलत चीज़ को नहीं कबूल करेंगे। फिर आप दोबारा पढ़ती हूँ। सर झुका के जीते रहने की 1000 वजूहात पे, सर उठा के जीने की एक वजह भारी होती है। जिस दिन वो वजह आपके हाथ लग गई, आपका सर खुद बखुद उठ जाएगा। सर उठा के जीने की सरशारी क्या होती है आप खुद ही जान जाएंगे। एक बार आप सर उठा के जीने के आदी हो गए, तो सर झुका के जीने का तसव्वुर आपके लिए डरावना ख्वाब बन जाएगा। आप हैरान होंगे कि सर उठा के जीना कितना मुश्किल था, सर झुका के जीना कितना मुश्किल था, सर उठा के जीना कितना आसान है। बात समझे? ये जो कहते हैं ना कि बंदगी में हुर्रियत है, ये जो अल्लाह ने हमें कहा है ना, या का नाम बदू, वो भी यही बात है। ये सर एक के आगे झुकेगा, और वो कौन है? अल्लाह की जात। जब हम अल्लाह के आगे झुकते हैं तो बंदों के आगे नहीं झुक सकते। देखिए, अल्लाह के फैसले अच्छे लगे बुरे लगे झुकना, वहाँ नहीं सर उठाना, अल्लाह मेरे से ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये क्यों नहीं दिया, या दे के मेरे से छीन क्यों लिया, वहाँ नहीं ये कर सकते आप में। लेकिन इसके बरअक्स हम बाकी चीज़ों में अपना हक लेंगे। ना लो, यानी वो कहते हैं कि ना छेड़ो ना छोड़ो, दो लफ्ज़ याद कर लें, ना छेड़ो ना छोड़ो, ना हक से ज़्यादा मांगो ना अपना हक माफ़ करो। टिट फॉर टैट इंग्लिश में कह लें, और कुरान के लफ्ज़ हैं, वल हुरुमातु क़िसास, इज्जतें तो बदले की हैं, इज्जत करें इज्जत करा ले। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इनमें आ गई, बेटी का बाप और बेटे का बाप, बेटे की माँ, कितना डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में। लड़का लड़के के घर वाले वो बहुत ही बुलंद है, शादी में आए बारात का खाना उनको पूछना, तो लड़की वाले बड़े मजलूम हैं, ये भी गलत है। आप बेटी के माँ बाप हैं, आप ज़्यादा इज्जत करवाएं अपनी, क्योंकि आप अपनी बेटी दे रहे हैं। ये जो शुरू से ही हम कह देते हैं ना, चलो बेटा तुम जो कह लो हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। मैं एक किसी का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि लोग बेटियों की शादी से पहले पैसे जमा कर करके रखते हैं कि चलो हमारे घर रिश्ता आ जाएगा तो हम ये करेंगे, और जब पैगाम देते हैं तो उनको कहते हैं कि आप ज़रा हमें हमारी अपनी फरमाइशें बता दें, जो जो है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी करें। तो आप तो खुद अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को किसी जगह पर रख कर नीचे ना रखें। और इसमें मज़ा कितना है। मुझे ऐसे लग रहा है इन बातों को पढ़ते हुए, एक आज़ाद शख्स और एक ग़ुलाम। अल्लाह ताला कुरान पाक में कई जगह फरमाते हैं, सूरह फातिर में भी आता है, सूरह नाहल में भी आता है, कि क्या कभी ग़ुलाम और आज़ाद शख्स बराबर हो सकते हैं? एक शख्स जिसके कई आका और किसी का एक ही आका, बराबर हो सकते हैं? तो जिए, आपको अल्लाह ने बड़ी मेहनत से पैदा किया है, अल्लाह ने आपसे बड़ी उम्मीदें रखी हैं। बाद लोग सारी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। आप इस टॉपिक का नाम कॉन्फिडेंस भी रख सकते हैं। ज़रूरत उर्दू में ज़रा समझ नहीं आता ना, तो कुछ चीज़ें हमें हमारी ज़िंदगी में सुन सुन कर भी फ़ायदा देती हैं, तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना। अच्छा, हम क्या कहते हैं, अच्छा देखना अल्लाह तो मुझे जज़ा देगा। हाँ देगा, आपको जन्नत तो दे देगा इंशाल्लाह, क्योंकि सब्र आपने किया। पर आप सब्र क्यों करते हैं, आप शुक्र क्यों नहीं करते? लोगों को गलत रवैयों का आदी मत करें, ये मैसेज है इसका। फिर उसके बाद, सर उठा के जीने का एक फ़ैसला मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गया। इस एक फ़ैसले ने मेरी काया पलट दी। तब से मेरी ज़िंदगी का मिशन सर उठा के जीने का राज बताकर दूसरों की काया पलटना है। राज जानना चाहते हैं, अपनी काया पलटनी चाहते हैं, सर उठा के जीने के सफ़र में आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी। पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मैं ये सही लोगों से बात कर भी रही हूँ कि नहीं? आप में से किसी का ये इशू है भी कि नहीं? पता चले पहले ही सर बड़े उठे हुए हैं, अब इस बात को सुन के वो तन ही गए हैं। हाथ खड़ा करें कि आप में से किसको इस टॉपिक की ज़रूरत है, अपना हक लेने में किसको मुश्किल लगता है? तो सारे ही ऐसे हैं, तो फिर ज़रूरत है ना। तो आइए देखते हैं, फिर लेना है तो फिर इसको आप देखेंगे कि इससे आपकी ज़िंदगी कितनी खुश होगी। क्योंकि दुखी लोग कब अल्लाह को भी नहीं अच्छे लगते, पीछे हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है? तो क्या करें फिर आप? आप चाहते हैं कि आप सर उठा के जिए, आप अपने अंदर क्या करें? सबसे पहली चीज़ लिखिए, बड़ी सोच। सबसे पहली चीज़ का नाम है बड़ी सोच, यानी आप सोच को बुलंद करें। एक शेर अलामा इकबाल का, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। तो निगाह बुलंद कीजिए, आप बड़ी बातें सोचें। क्यों सोचते हैं कि मैंने सिसक सिसक के मर जाना है? क्यों सोचते हैं कि चलो ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ, मैंने नहीं दिन पूरे करने, मैंने कोई बड़ा काम करना है? देखिए, अल्लाह से भी बंदे को मनवाना पड़ता है। अल्लाह ताला, मैंने करना है बड़ा काम, मैंने अपनी शख्सियत को मनवाना है, मैंने पिसना नहीं, मैंने दबना नहीं। हाँ मैं ज़्यादती ना करूँ किसी पर, लेकिन अल्लाह ताला मैंने किसी की भी नहीं सुननी। तो बड़ी सोच रखिए, बड़ा गोल रखिए। सोच की बुलंदी ही सर उठा के जीने की इब्तदाई सीढ़ी है। सोच बुलंद रखने में हर्ज ही क्या है? मेरे ख्याल में सोच पस्त या बुलंद रखने में दिमाग का एक जितना खर्च होता है, तो क्यों ना सोच ऊंची ही रखी जाए? आप सोचते होंगे मैं ख्वामखा आपको हवाई किले बनाने पर उकसा रहा हूँ। सच तो ये है कि आपकी कामयाबी का साइज आपकी सोच के साइज से बढ़ नहीं सकता। अगर आपकी सोच महदूद है तो कामयाबी भी महदूद होगी। बात वाज़े, आपने जितना बड़ा बर्तन रखा हुआ है ना अपने सामने, उतनी चीज़ भरेगी ना। आप थोड़ी सी सोच लेके खुश हैं तो अल्लाह आपको ज़्यादा कैसे दे, पर क्यों दे? तो ज़रूरत है इस बात की कि हम पहले अपने बर्तन को बड़ा करें। और ये बर्तन किसका है? ज़िंदगी का बर्तन। गेट मोर फ्रॉम लाइफ, कि मैंने बड़ी चीज़ लेनी है, मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने हैं, मैंने अपने आप को वेस्ट नहीं करना। क्या आप अपने इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जिन्होंने बड़ी और बुलंद सोच रखने की जुरत की और आज वो अपनी इस सोच की अमली तस्वीर बनकर उभरे हैं? कभी पढ़े हैं किसी के हालात ज़िंदगी? बचपन से एक दो वाक्यात हमने सुने हुए हैं, कोई वो सिकंदर आज़म के, बैठा था थक के, फिर गिरा, फिर चींटी गिरी, फिर उठी, फिर उसने कहा मैंने हिम्मत नहीं हारी। सुना वो वाक्य? इसी तरह मुझे एक वो याद आ रहा है जो मगरमच्छ वाला, कि एक शख्स थे मगरमच्छ को पानी में देखा तो कहाँ इसको निकाल दूँ, तो निकालने की कोशिश की तो उसने डंक मारा, फिर गिर गया पानी में। शायद 17-18 दफ़ा उन्होंने उसको निकालने की कोशिश की और हर दफ़ा वो पानी में चला जाता था। तो किसी ने कहा कि बुज़ुर्गों, ये इतनी दफ़ा आपको डंक मारे और आप अपनी जुरत ही नहीं छोड़, आप कोशिश नहीं छोड़े? तो उन्होंने कहा कि जब ये अपनी खूह नहीं छोड़ता तो मैं अपनी खूह क्यों छोड़ूँ? सुना हुआ ना वाक्य? तब सवाल अपने आप से समझिए कि कुछ लोगों ने जब खुद को बदलने का इरादा किया तो बदल गए। इसको आप जहन में रखिए। जब तक आप अपनी सोच को बुलंद नहीं करेंगे ना, तब तक आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम होगा नहीं। यानी इसको मैं ऐसे समझती हूँ अपने इमेजिनेशन में कि आपके सामने सीढ़ी रखी हुई है और उस सीढ़ी के 10 स्टेप्स हैं। आप क्या सोचते हैं कि मैंने 10वें स्टेप पे पहुंचना है, तो आपसे उम्मीद क्या की जा सकती है कि आप कहाँ पहुंचेंगे? इंशाल्लाह आप 10वें पे पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत टूट गई तो 9वें पे रुक जाएंगे, और थोड़ी सी मुश्किल हुई तो 8वें 7वें पे। लेकिन अगर आप सीढ़ी के पास खड़े सोचते हैं मैं बस 5वें स्टेप तक जा सकती हूँ, ऊपर नहीं जाऊँगी, या 5वें फ्लोर तक जा सकती हूँ, तो कभी भी आप 10वें पे नहीं पहुँचेंगे। लिखिए ये बात, बस दफ़ा हमारा गोल ही लेट आने का होता है, अल्लाह की कसम, बस दफ़ा हमारा नहीं सुनने का ही गोल होता है। ये छोटी सोच है, बस दफ़ा मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये सोच होती है। बस दफ़ा आप कहते हैं जल्दी भी उठ के चली गई तो कोई हर्ज नहीं है मेरा, ये छोटी सोच है। बस दफ़ा आप अपने बारे में एक छोटी सोच क्या रखते हैं, मेरे तो करने का ये काम ही नहीं है, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है। तो जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, उस दिन फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दुनिया भर में जिस तेज़ी से आज लोग कामयाब हो रहे हैं, इसकी माजी के किसी दौर में मिसाल नहीं मिलती। यानी पहले थोड़े लोग होते थे जो कामयाब होते थे, आज दुनिया में ज़्यादा लोग हैं ऐसे। 1950 यानी 1950 में पूरी दुनिया में चंद सौ अफराद लखपति थे। लिखिए ज़रा, 1950s में अमूमन क्या लफ्ज़ बोला जाता था किसी के अमीर होने के लिए? आप में से कोई बताना चाहता है? 50s में तो हम थे ही नहीं, लेकिन जी आप बोलिए। लखपति, देखिए लखपति का लफ्ज़ तो हमने खुद सुना हुआ है, ये 50s की बात नहीं, ये 20s की बात कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही है ना, जब आज से 20 साल पीछे आप देखते हैं ना, तो लोग किसी की बड़ी दौलत की मिसाल देते थे, कहते थे लखपति। और आपको याद है गेम भी होती थी पाकिस्तान में, कभी खेली है लखपति गेम? मुझे बहुत कुछ याद आ गया इस लफ्ज़ से, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन लखपति गेम में वो बादशाह बनते थे। पर्चियाँ, झूठे नोट, नकली नोट होते थे, हम देख रहे होते थे पास खड़े, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में लखपति गेम देखी है। फिर वो कागज़ के नोट जिसको मिल गए वो लखपति हो गया। आज लख की कोई अहमियत है? पाकिस्तान गए कभी? मैं यकीन से कह सकती हूँ आप यहाँ से 1 लाख रुपया पाकिस्तान का अपने पर्स में रख के जाएं, और आप सोचेंगे शायद आते हुए मैंने कोई वहाँ से ज़मीन का टुकड़ा ही ले आना है, और आपको 1 लाख रुपए में वहाँ से क्या मिलेगा? हाँ जी बताइए,
4 जोड़े,
4 जोड़े आपको क्या मिलेगा जी? आपको बेचारी
एक लहंगा नहीं मिला।
एक लहंगा नहीं मिलता जी। और उमे बीबा जी, कपड़े 1 लाख के, गर्मियों के कपड़े बना लाएंगी जी। और बाजी परवीन जी, आप डिनर सेट 1 लाख का आएगा?
डिनर सेट तो एक ही लिया था जब पाकिस्तान, पता नहीं आज से कितने साल पहले, वही चल रहा है, मैंने खरीदा ही नहीं बस।
यानी यकीन करें इतना डिवैल्यू है पाकिस्तान का हमारा रुपया। हम जब यहाँ से जाते हैं हम सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ है, तो वहाँ वालों की बात नहीं हवाओं में है। तो लखपति तो आज कुछ नहीं, तो करोड़ पे आ जाएं, करोड़ क्या है? यकीन करें करोड़ लफ्ज़ आज से मेरे हाल 16-17 साल पहले हमें ऐसे लगता था कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है 1 करोड़ रुपया, इम्पॉसिबल थिंग थी। और आज 5 मरले का घर किसी जगह आप लेना 1 करोड़ से ऊपर का होगा शायद, ये हालात है। तो अब आप सोचिए कि 1950s में पूरी दुनिया में चंद लोग लखपति थे, आज सिर्फ अमेरिका में लखपतियों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। लखपति आप मिलियनेरियन कह लें, बिलियनेरियन इंग्लिश के लफ्ज़ ज़रा हमारे लिए मोर फेमिलियर है, कोई भी नाम ले लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स से निशात ग्रुप के मियाँ मंशा तक, जिस जिसने बुलंद सोच का रास्ता चुना, सर उठा के जीने के अहल ठहरे। बिल गेट की कहानी तो मैं भी आपको सुना चुकी हूँ ना, जब आप सोच लेते हैं ना फिर अल्लाह ताला आपका सर उठाता है। इंसान की कामयाबी की बुलंदियों की वजह अगर इसकी सोच ही है, तो फिर अक्सर इंसान महदूद इंसान की कामयाबी की बुलंदियों की वजह इंसान की कामयाबी की बुलंदियों की वजह अगर इसकी सोच ही है, तो फिर अक्सर लोग महदूद सोच पर इक्तफा क्यों कर लेते हैं? जी आप बताइए, क्यों नहीं लोग बड़े गोल बनाते हैं? जी बताएं शाबाश। नाकामियों का डर होता है जी आप, कॉन्फिडेंस की कमी जी आप,
खौफ
खौफ या डर? जी आप बताइए।
यही कि जरूरत नहीं होती।
जरूरत नहीं होती जी, पीछे से जरूरत नहीं होती जी, आप बताइए जी। आप मेहनत करनी पड़ती, असल ये बात है। ये सब नहीं ठीक। असल बात यह है कि लोग बड़ा गोल क्यों नहीं बनाते, कि उसके लिए मोर देन से गुजरना पड़ता है, रूटीन तोड़नी पड़ती है, जो सब कर रहे हैं उससे ऊपर चलना पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि इधर ही बैठ के खा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ज़रा निकलें, भागें, दौड़ें। कुछ कहते हैं छोड़ो, इधर बैठो, चाय के हलवा बनाओ और खाते हैं, मौसम बड़ा ठंडा है ना। ये बात रिस्क नहीं लेते, हम थक जाते हैं, हम कहते हैं नहीं, जो हो रहा है ना जी शुक्र करें। तो भी शुक्र तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या हम ज़्यादा शुक्र ना करें? फिर इसी तरह से इंसान की कामयाबी का साइज़ अगर इसकी सोच के साइज़ के बराबर होता है, यानी जितनी बड़ी सोच उतनी ही बड़ी कामयाबी, तो बड़ा सोचने में क्या बुराई है? बड़ी सोच रखने में क्या रुकावट है? क्या बुलंद सोच पे कोई टैक्स अदा करना पड़ता है या हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी है? कभी किसी को बुलंद सोच रखने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया? अब आप कहेंगे ये कैसे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सोचें, यानी आपको सोचना सिखाया जा रहा है कि क्या बुलंद सोचने पे पैसे लगते हैं। वो हमारे यहाँ कहते हैं चलो भाई देख आते हैं, देखने के कोई पैसे कहते हैं ना ऐसे। तो आपको मैं कहती हूँ कि बुलंद सोचें। चलिए ज़रा मैं आप सबसे सोचवाऊँ, ज़रा अपने अपने बारे में हम कुछ सोचते हैं। क्या आज 16 अक्टूबर है? 16 अक्टूबर 2015 है। हम अपने बारे में सोचते हैं कि 16 अक्टूबर 2020, 5 साल ले लेते हैं, ज़िंदगी रही, ऑफकोर्स ज़िंदगी का तो पता नहीं, अगर रही तो आप क्या सोचती हैं कि आप कहाँ देखना चाहती हैं खुद को? जी नौशीन जी। पक्की बात है, सोच के बोलिएगा। ये कहती हैं कि दीन के कामों को और अच्छी तरह करना चाहती हूँ जी। ऑनलाइन वाले भी लिखें जी आप। जी हो सकता है ना, ख्वाब तो है ना, देख सकती हैं ना आप ये ख्वाब जी। आप कहाँ देखना चाहते हैं खुद को? इसी जगह बहुत बेहतरियों के साथ जी। आप
पर, आपकी तरफ समझना,
मेरी तरह क्यों? आप ये कहें आपसे भी अच्छा सीखना चाहती हूँ, आपसे भी अच्छा समझना चाहती हूँ। देखिए सुबह आप जा रही थी अपनी बच्ची को लेके ना, ये मैं सुबह आई तो ये गाड़ी में खड़ी थी, गाड़ी में बच्ची थी, तो ताहिरा ने कहा कि जुनैरा भी अभी आई है ना, तो हालांकि हम लेट थे, मतलब हम समझ रहे कि मुझे तो जब भी आना था, लेकिन हम 9 पे नहीं आए, 9 से बाद में आए। तो जब खड़े हुए तो पता चला ये आ नहीं रही, बल्कि मुझे इनका लेट आने पे थोड़ा सा मेरा दिल दुखा कि जुनैरा तो लेट नहीं आती, ये क्यों लेट आई है? लेकिन पता चला ये आ नहीं रही, ये जा रही है। क्या हुआ? बच्ची ने क्या कर दी ना, वॉमिट कर दी है। तो फिर कुछ ताहिरा ने कहा, कुछ मैंने कहा कि आप आइए इधर, तो और भी संभाल लेंगे, तो घर जाएंगी तो क्या करना है, और बच्ची का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ऑलरेडी शाम का या जब भी क्लास के बाद का। तो ये आ गई, फ़ायदा हुआ? आप सच बताएं, मुझे ना मैं माइंड नहीं करूँगी, ऊँची बोले। आप इस वक्त अगर उस 9:30 पे घर जा चुकी होती हैं, अब 2 घंटे गुजर चुके होते हैं, तो आप इन 2 घंटों को भला कैसे गुजार रही होती? बच्ची रोती, आपकी गोद में वोमिट करती, आप संभालते। अब कौन संभाल रहा है? अल्लाह वाले संभाल रहे हैं ना। देखिए मैं तो कहती हूँ जिनके बच्चे अल्लाह ना करे बीमार है, वो घर से बस इधर तक आ जाएं, यहाँ तो 6 माएँ बैठी हैं, वो आपसे ज़्यादा प्यार से संभालेंगी, राइट ना? तो आप ये तो ना सुनते, और गिल्ट आपको अलग होना था। तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लपेट लपाट के उनको बना बनू के सवार के कंबलों में लपेट के ले आए, कुछ भी नहीं होगा, आपके बच्चे सख्त जान हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों पे आते हैं, और मुझे कितना दुख होना था इस बात का कि अल्लाह इनकी बच्ची को आज वॉमिट आई तो क्यों आई। तो ये मोहब्बत की बात है ना जी। आप कहाँ देखना चाहते हैं खुद को 5 साल में? यानी आप ये चाहती हैं कि आपके अपने ख़ानदान में भी दीन आ जाए। अच्छी सोच है, हम सब क्यों नहीं चाहिए अपने शहर अपने मुल्क का हक अदा करें जी। उम्मे हबीबा जी आप क्या सोचते हैं? यानी 5 साल बाद आप चाहती हैं कि आपके घर वाले भी आपके साथ दीन में भाग रहे हों जी। प्रवीण भाई जी आपकी क्या, आप 5 साल बाद कहाँ जाना चाहती हैं?
उस
सर जी, मैं अपने कुरान को और बेहतर करना चाहती हूँ और अपने कलाम को और दूसरों को भी सिखाना चाहती हूँ।
ठीक है जी, नेक्स्ट।
जो काम कर उसमें ज्यादा और मजबूती के साथ हो और अच्छे तरीके से तो साथ हो, मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे मैडम मुझे काम।
ठीक है जी बाजी, आप क्या सोचते हैं, आप 5 साल बाद कहाँ जाना चाहते हैं? बड़ा सा स्कूल बन गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये ऑनलाइन पे एक दो कमेंट है उनको पढ़ लेते हैं। ये लिखती हैं कि कुरान पाक को समझने की पूरी कोशिश, डू समथिंग मोर फॉर दी उम्मा, बी अ बेटर मुस्लिम, यानी उम्मत के नाते से हमें उभरना है, बी अ रोल मॉडल फॉर आवर चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स, दूसरों को सिखाना चाहती हूँ, अल्लाह ताला हमारे दीनी कामों में बरकत डाल दें, दाईये दीन लोगों को अल्लाह से जोड़ना चाहती हूँ, कोई ऐसा अमल जो मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, गुड शाबाश, अपने प्यारों को साथ लेके चलना है। अब आप मुझसे पूछें मेरा क्या गोल है 5 साल बाद जिंदगी के बारे में, है गोल कोई है? फिर बाद में आपने कहना जो आपका गोल है वही हमारा गोल है। मैं सच बताऊं आपको, मैं कभी गिव अप नहीं करती। ये मैं जितनी बातें आपको पढ़ाती हूँ, बुक तो मेरे हाथ से अचानक लगी है और ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करती कि आप लें, क्योंकि आप ये बातें सुन रहे हैं तो भी बहुत है, अच्छी बुक है, लेकिन उसमें से मैं कुछ चीज़ें एडिट भी करती हूँ पढ़ाते हुए, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ कि मेरा ख्वाब क्या और मुझे वो हकीकत दिखता है, मैं ये देखती हूँ कि 2020 में, यकीन करें मैं आपके शहर ही की बात करूँगी, हमारी एक यहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, आप जैसे लोग डेडिकेशन के साथ जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ अगर आप क्लासों में 8, 10, 20, 50 जितने भी लोग आते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा एक बहुत ऑर्गेनाइज स्कूल होगा, लोग अब हमें समझ चुके होंगे और दाखला नहीं मिलेगा लोगों को। और हम एक साल का कोर्स मेरा ड्रीम है हमेशा, मुझे ये लंबे खेल नहीं अच्छे लगते, 10-10 साल 8-8 साल, ये ठीक है टेस्ट डेवलप करें, लोग इधर क्लास लें 2 दिन की, उधर लें शाम की, लें दें, लेकिन स्कूल में जब लोग आए तो वो आए जैसे आप किसी जगह पढ़ने जाते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये होगा, मैं इसको कैसे समझती हूँ आपको, मैं सच बताऊँ, मैंने कई दफ़ा ये बात शेयर की है अपनों प्यारों से, जिनसे भी मैं अपने दिल की बातें करती हूँ, कि नॉर्वे हमारा मक्का है। कैसे? नबी सल्लम का मक्की दौर है। आपको होता है कि 13 साल में 100 कुछ लोग तैयार हुए थे, 4-3। अब कभी किसी क्लास को शुरू करें तो थोड़े लोग होते हैं ना, तो मेरा दिल बुरा नहीं होता, मुझे ये दुख होता है कि हमारी कोशिश कम होगी या हम वहाँ जा नहीं सके, या जो जा सकते थे जिनको पता है वो नहीं आए, जो आ सकते थे वो नहीं आए, लेकिन मैं नहीं घबराती। आपको होता है कि शाम का जो नया कोर्स है उसमें कितने लोग आ रहे हैं डेडिकेशन के साथ, जिसको स्टूडेंट कहेंगे 3 लोग हैं, और स्टाफ के कितने लोग उस वक्त आते हैं, कितनी दूर से आते हैं। लेकिन कल जब क्लास शुरू हुई, कल मैंने एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया, शाम को क्लास तो टाइम पे करनी होती है शुरू, तो जब क्लास शुरू हुई, शुरू में दुआ चल रही थी, दुआ, तो मैंने अंदर आके देखा तो कितने स्टूडेंट थे, 1, और वो स्टूडेंट वो थी मुझे पहली बार मिल चुकी कि जिनके बारे में मुझे परसों डाउट था कि उनके मियाँ कुछ उन पर रोप डाल के रख ही ना लें घर पे। लेकिन कल मैं निकलने लगी नीचे वॉक के लिए, तो दरवाजे से भागते हुए मुझे दिखा एक वो थी, मैंने उनको देखा ऐसे हाथ कर दिया, मेरा हाथ खुद ही खुल गया, मैंने उनको हक दिया, और क्योंकि वो 10-12 मिनट पहले आ रही थी, पीछे अबाजी रेहाना भी थे, मैंने उनको भी हक दिया, मैंने कहा माशाल्लाह आप आ गए सीखने। जब वो आई तो मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके मेरे दिल में एकदम आया कि बाकी 2, लेकिन ये 1 आ चुकी थी, ये डाउटेड थी, 2 का मुझे पता था आएंगे। मैं नीचे उतरी, जब सीढ़ी से निकल के गए ना, तो ऊपर वहाँ से जाते हैं ना, तो इधर आपको तो ऊपर बस रुकती है, तो मैंने देखा बस में से एक लड़की निकली है और तकरीबन भागती हुई नीचे आ रही है इधर से, आप तो समझ ही रहे हैं ना, तो स्लोप से, तो मैंने देखा तो वो दूसरी बच्ची थी, और मुझे समझ आ गई कि इसकी बस लेट है या ये पिछली बस में नहीं आई, तो वो 5-6 मिनट लेट हो गई। क्लास शुरू हुए 3-4 मिनट ही हुए थे अभी। खैर वो भाग रही थी आ रही थी। तीसरी बच्ची का मुझे पता था कि वो भी कहीं से आती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों भी हैं। कल और लिसनर्स भी आ गए कुछ, लेकिन मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहा कि अल्लाह तू क्यामत के दिन हमारी ये नेकी कबूल करना कि हमने तेरे नबी की उस बात पे अमल किया है कि अली अगर तेरी कोशिश से कोई एक भी हक पे आ गया तो तेरे लिए ये सुर्ख होंठों के मिलने से बेहतर है। फिर एक एक के साथ भी हम वैसे ही करेंगे। हाँ मुझे दुख कब होगा? और मैंने पहले सोचा ये एक बैठी हैं तो इस वक्त इस क्लास की खिदमत के लिए कितने लोग हैं, एक टीचर स्टेज पे, एक टेक्निकल पे, एक बाय रिसेप्शन पे, तीन लोग तो कम से कम हमें चाहिए ही होते हैं, चाहे वो सबील खुदा हो, चाहे वीकेंड है या वीकडे ऑफ है कुछ है। और उस वक्त बाहर बच्चों की क्लास ही लोग और भी थे स्कूल में, लेकिन इस क्लासरूम में तीन ही लोग थे ना। फिर बाद में अल्लाह ने भेजा, तो मैंने दिल में सोचा अल्लाह मैं कहाँ से डमी लोग बनाऊँ कि उन्हें कह दूँ ऐसे ही आके बैठ जाओ, सिर्फ इसलिए कि कहीं साथी ये ना सोच लें कि अब एक तीन लोगों के लिए इतनी मेहनत क्या करनी है। मुझे खौफ आता है इस बात से, लेकिन आप हमारी इस आदत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे जब भी बताइए कि एक बंदे के लिए भी उतनी ही क्लास की मैनेजमेंट, टाइम टेबल, रोल कॉल, एवरीथिंग जितनी 100 के लिए होगी। कई क्लासों में बहुत भी आते हैं, है ना, लेकिन शाम का वक्त है अभी लोगों को पता नहीं। लेकिन मेरा ड्रीम क्या है कि देखिएगा एक दिन ये सारी कुर्सियाँ भर जाएँ। इसी तरह मैं सोचती हूँ कि अब फुल टाइम जो बंदा 10, देखिए ना हफ्ते में 5 दिन कोई आके आपके साथ 5 घंटे गुजार के 25 घंटे लगा के जाती है ना यूसुबुल सलाम, तो आप क्यों इसमें 100 मांगते हैं? 10 भी बहुत हैं। क्यों आप वंस अ वीक क्लास शुरू करें, 100 लोग आ जाएं, तो 100 लोग आएंगे तो वो कब कुरान पूरा करेंगे? 10 साल में। तो 10 साल में 100 सीखे, तो अगर 1 साल में 10 हैं तो दूसरे साल 10 हैं, तो एंड पे 10 साल में कितने हो गए? 100 ही हो गए ना। कभी ना नंबर गिने, डोंट। और मैंने ना अल्लाह से एक मौके पे दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे कभी अपने साथियों के स्टूडेंट्स के हेड काउंट पे ना डालना, मुझसे कोई पूछे भी ना कितने आते हैं, मैं कभी नहीं बताती, मेरा दिल ही नहीं करता मुंह पे आए। मैं कहती हूँ ये मुझे पता है कि जो नहीं आ रहे वो बहुत ज़्यादा है, जो आ रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा भी नहीं आ रहे, तो ये चीज़ें ही मान देती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसको हार नहीं मानती, एज़ इट इज़ के काम करने वाले मौजूद हैं। आप जैसे डेडिकेटेड लोग हैं, किसी भी शहर के इदारे को जाके देख लें पिछले 5 साल में इतने डेडिकेटेड लोग उनके पास कोई नहीं है जितने आपके पास हैं, है ना। मजबूरियों में लड़ झगड़ के आते हैं, खुद से मारे खाते हैं, हालात के तपेड़े खाते हैं, आते तो है ना, हो तो है ना, तड़प तो। और ये कौन चीज़ देती है, ये कौन सी चीज़ देती है? ये कुरान। और ये जो मैंने आपको 3 स्टूडेंट्स बताए ना, तीनों देखिएगा अल्लाह इनको जमाए रखे, ये अब आपसे भी शाप है, आंखों में आंखें डालने लगे। उनमें से एक स्टूडेंट एक दिन पहले ही शेयर कर रही थी कि मैं तो बड़ी खुश होकर यहाँ से गई, मैंने बड़े जोश से सूरह फातिहा की बात की घर में, तो मेरे मियाँ ने मुझे ठंडा कर दिया। क्या कहा? मैंने कहा उन्होंने क्या कहा? कहते उन्होंने कहा नहीं, मेरे माँ कहती मेरे बूढ़े माँ सास ससुर मेरे साथ रहते हैं तो मेरे मियाँ अच्छे हैं, कहती दीनदार हैं, खुश है मेरे आने पे, वो खुद भी सुनते हैं। लेकिन कल मैं गई तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी वो लेट हो जाता है, मेरी भी जॉब है, वो भी कोई ऐसे काम करते होंगे, तो तुम घर रहो और मेरे माँ बाप को देखो, उनकी टेक केयर करो, वो तुम्हारी दीन है, इबादत है, तो इस वक्त ना जाओ। तो मैंने कहा फिर आपने क्या कहा? कहती मैंने उनको कायल कर लिया। कहती मैं यकीन करें यहाँ आने के लिए सुबह से इस तरह से काम करके छोड़ के आई हूँ कि उनको कोई जरूरत मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा मैनेज करें, और अल्हम्दुलिल्लाह ही अल्लाह उनको आते ही रखे आगे भी। तो ये याद रखिए कि गोल के हमने आगे जाना है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हमारा सब्र है ना ये ज़ाया नहीं जाएगा। ये जो मक्का के 13 साल का सब्र था ना, दुश्मनियाँ, अब काफ़ी लोगों ने तो हमें एक्सेप्ट कर ही लिया। मैं जब इधर सैर के लिए जाती हूँ और रस्तों में लोग, और ये सारी पूरी आप देखिए हमारे बिल्डिंग्स ये मुसलमानों की हैं, और मज़े की बात कहूँ या तकलीफ़ की कहूँ कि जितने लोग आते हैं वो बाहर से ज़्यादा आते हैं, इधर वाले कम क्यों आते हैं? शुरू के प्रोपेगंडे, ये वहाबी हैं या ये फलाँ हैं ये वो है, तो हिम्मत थोड़ी हारनी है। मैं कहती हूँ अभी भी जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह अगर हम इन लोगों तक खिलाएँ पिलाएँ, दावत दें, इनको बातें करें इनसे, तो अल्लाह एक एक करके लाएगा। कई साथियों से मेरी ऐसी रात जाते बातें होती हैं, तो बस हम अपने एक स्ट्रगलिंग दौर में है ना, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि एक दिन आप देखिएगा कि ये जगह भरेंगी। अभी भी अहमत है, आप लोगों से पूछें तो वो लोगों के तो जहनों में यही कुछ है ना कि इधर बड़े लोग आते हैं, इनके वॉलंटियर बहुत हैं, इनके टीचर बहुत हैं, लोग हमारी मिसालें देते हैं, लेकिन ये हम आपस में अपना दुख सुख क्यों कर रहे हैं कि हमने इस पर रुकना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हो रहा है, मैं तो वो हंसती हूँ कि इसके बाद भी क्लास शुरू हो जाए, इसके बाद अच्छे इस क्लास के दौरान दो के बीच में भी शुरू हो जाए। और आपको पता है कल मैं गिन रही थी कि 7 क्लासें हुई हैं, कल नहीं परसों गिनी थी, लेकिन सेम स्केड्यूल था कल भी कि सुबह से लेके हमारे यहाँ से निकलने तक 7 क्लासें हमारे स्कूल में हुई हैं। तो ये कोई छोटी बात है? एक बंदे को भी उससे फ़ायदा हो जाए, 7 क्लासों में एक एक भी आ जाए अगर तो, लेकिन फ़ायदा ही होता है ना। असल जो बात है ना, आपके हौसले नहीं कमज़ोर होने चाहिए। आपके अंदर जब डीमोटिवेशन आता है, होना ही कुछ नहीं, फ़ायदा ही कोई नहीं, कर ही कुछ नहीं सकती, तो फिर नहीं होगा। आप जब करना चाहते हैं अल्लाह आपसे कराएगा। आप फिर इन जुमलों को सुनिए, इंसान की कामयाबी का साइज़ अगर इसकी सोच के साइज़ के बराबर होता, इंसान की कामयाबी का साइज़ अगर इसकी सोच के साइज़ के बराबर होता है, यानी जितनी बड़ी सोच उतनी ही बड़ी कुर्बान कामयाबी, उतनी ही बड़ी कामयाबी, तो बड़ा सोचने में क्या बुराई है? सोचे बड़ा, थोड़ा क्यों सोचते हैं आप? बड़ी सोच रखने में क्या रुकावट है? क्या बुलंद सोच पे कोई टैक्स अदा करना पड़ता है या हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी है? कभी किसी को बुलंद वाला सोच रखने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया? मैं अजीब से सवाल पूछ रहा हूँ, तो फिर आप ही बता दीजिए कि बड़ी सोच या बुलंद तसव्वुर ज़िंदगी रखने से हम सब इतना क्यों घबराते हैं? क्यों हम अपनी सोच को औकात में रखने की बात करते हैं? हम अपनी औकात की हदों को उम्र भर फैलांगने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते? हमारी औकात तय करने का इख्तियार किसके पास है और उसे ये इख्तियार किसने दिया? ये जुमला सुना है आपने? अपनी औकात में रहो, अपनी हदों में रहो, मुंह संभाल के बात करो। भई आपको किसने जरूरत दी कि आप मेरी औकात मुकर्रर करें? अल्लाह ने मुझे आज़ाद पैदा किया। तो ये नेगेटिव जुमले ज़िंदगी से निकाल दें। अपने गोल बनाएं, मैंने बड़ा सोचना है, हो कुछ भी ना, नो प्रॉब्लम। और आप इस पे, मुझे याद आ रही हैं कुछ टॉक्स दी हैं, नबियों की सोच हमेशा बुलंद होती थी, पुर उम्मीद, स्ट्रगलिंग। क्यों अल्लाह फिर काम कराता है अपने? इसलिए कि सोच बड़ी थी। तो आज के बाद कभी आपने छोटी सोच नहीं रखनी। हमारी सलाहियतों की हदूद तय करने का हक हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? किसी ने कह दिया कि तुम फलां काम नहीं कर सकते हो और हमने इस जुमले को ही अपनी तकदीर समझ लिया। इसको मैं दोहराऊंगी, बड़ा खूबसूरत जुमला, तुम फलां काम नहीं कर सकते हो, हमने इस जुमले ही को अपनी तकदीर समझ लिया। हमारे बारे में किसी और की राय हमारी तकदीर कैसे बन सकती है? किसी का ख्याल हमारी मुसल्लिमा हकीकत कैसे बन सकता है? तो फिर आज हमने ये अभी तक जो बात सीखी है सब मिलके बोले हैं, वो क्या है? बड़ी सोच। करें कोई सोच, अपने लिए सोच रखें। आपको चंद सेकंड देती हूँ, कोई बड़ी सोच सोचें, और बल्कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सोच रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको इतना बड़ा कर देगा। मैं तो सर सजदे से ना उठाऊँ ना, तो यकीन करें कि मुझे हक बनता कि मैं कभी ना उठाऊँ, कि जब जो सोचा अल्लाह ने करा दिया, जो चाह वो मिल गया, जिसकी ख्वाहिश रखी दिल में, ख्वाब में भी कोई चीज़ देखी है ना, अल्लाह उसको हकीकत बनाता है। शायद मुझे ऐसे लगता है कि बस अल्लाह को बंदे से यही चाहिए होता है, तुम सोचो मैं करता हूँ, मैं गिव अप कर दूँ ना तो सब ढाल दूँ, कुछ नहीं हो सकता, मजबूरियों की आंधियों में बह जाऊँगी, परेशानियों में दुख, और ज़िंदगी का मुकद्दर जो है ना वो दुख रह जाते हैं। फिर ये भी याद रखिए, जो छोटी छोटी सोचों में, छोटे छोटे कामों पे राज़ी हो के सारी ज़िंदगी दूसरों के इशारों पे खेलते हैं ना, तो वो फिर मरते हैं तो किसी को फ़र्क कोई नहीं लगता, कहते चलो एक दिन जाना ही था, अल्लाह इनकी आखिरत अच्छी करे। लेकिन जब आप बड़ी सोच रख के जीते हैं ना, तो आप बहुत सारों को सोचना चाहते हैं, दूसरों को भी सोचना सिखाते हैं, तो आप दूसरी चीज़ पर चलते हैं। आप ज़रा ख़ुद भी तो सोचिए ना कि वो दूसरी क्या चीज़ है जो आपको सर उठा के जीने के काबिल करेगी। सोच तो रख ली, आप ज़रा स्टेप्स पे आए ना, सोच तो कर ली, तो सोचने में क्या है? मैं सोच लूँ मैं अमेरिका का की सदर बन जाऊँगी, तो सोचो में कौन से पैसे लगते हैं? जैसे अभी हमने देखा कि सोचों पे तो कोई टैक्स भी नहीं है, तो फिर यकीनन सोच के ऊपर भी एक चीज़ होगी, और वो क्या है? यकीन। बड़ी सोच रखे, پھر اس پہ یقین کریں, آئی ول ڈو اٹ, مجھے یقین ہے یہ ہوگا. یہی ہے بہم بالآخرتی ہم یوقنون. جب تک جنت کا یقین نہیں آتا نا, تب تک جنت بھی کوئی نہیں ملتی. سچ بتاؤں آپ کو, دل مل یقین آلوں کو بس اللہ تعالیٰ نے کوئی شروع کی جنت دینی ہے. پورے یقین کے ساتھ جنت الفردوس مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے گا, یہ اللہ کا بات ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یقین کیا ہوتا ہے, کس پر یقین. پہلی بات, اپنی ذات میں یقین. یہ یقین کہ جو بڑی سوچ میرے ذہن میں رنگ بھر رہی ہے, یہ رنگ حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں. چلیے میں آپ کو پھر چند سیکنڈ سوچنے کا موقع دیتی ہوں. ابھی پچھلے حصے میں آپ نے کوئی بڑی سوچ سوچی ہے نا, تو اب آپ یقین دلائیں خود کو کہ یہ ہوگا. اٹ ول ہیپن. وہ شہزادے کی کہانی یاد کر لیں, اس کا کب ٹھیک ہو گیا تھا نا, تو یہ بھی دور ہو جائے گا. میری سب کمیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ, میرا اللہ قادر ہے. میری سب بیماریاں دور ہو جائیں گی, میرا اللہ شافی ہے. میرے سارے راستے کے جو پتھر ہیں وہ ہٹ جائیں گے, کیونکہ وہ میرا رب ہے نا جو قدیر ہے اور قادر ہے. آپ اس طرح خود سے باتیں کریں, خود کو یقین دلائیں کہ جو میں سوچ رہی ہوں یہ ضرور ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اگر کسی نہ کسی طرح ہم بڑی سوچ کی راہ پر چل بھی پڑیں, اپنی اوقات سے زیادہ بڑی سوچ, خواب, منزل اور کامیابی پر نظر رکھنا شروع بھی کر دیں, تو اپنی ذات پر عدم اعتماد سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں. یقین کی فراوانی ہوگی تو بڑی سوچیں بڑے نتائج پیدا کر پائیں گی. لکھیے, یقین کی فراوانی بڑی سوچوں کو بڑے نتائج میں بدل دیں گی. تو پھر آپ کہہ لیجئے کہ بڑی سوچ سے بھی اہم چیز کیا ہے, یقین. آئی کین ڈو دس. جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا ہی بڑا یقین درکار ہوگا. یہ بھی لکھے, بڑی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں, بیکار ہو جاتی ہیں اگر اس کے ساتھ اتنا ہی بڑا یقین نہ ہو. پھر ہم کہتے ہیں جھاگ کی طرح بیٹھ گئے, اٹھے تھے بہت جوش میں پھر ہوش آیا تو بیٹھ گئے. نہیں, بڑی سوچ تو بڑا یقین, پھر فائدہ ہوگا. اگر کسی نہ کسی طرح ہم بڑی سوچ کی راہ پر چل بھی پڑیں, اپنی اوقات سے بڑی سوچ, تو لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں پیچھے ڈال دیتے ہیں. کیسے؟ اپنی اوقات سے زیادہ بڑی سوچ, خواب, منزل اور کامیابی پر نظر رکھنا شروع بھی کر دیں, تو اپنی ذات پر عدم اعتماد سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے. یقین کی فراوانی ہوگی تو بڑی سوچیں بڑے نتائج پیدا کر پائیں گی. جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا ہی بڑا یقین درکار ہوگا. بے یقینی بلند سوچوں کو سر نگوں کر دیتی ہے. یہ بھی لکھ لیں, بڑی سوچیں اپنی موت کب مرتی ہیں, جب بے یقینی آتی ہے. بے یقینی عمل کی طاقت چھین لیتی ہے. ایسے جملے ایک لائن میں بس ایک ہی لکھا کریں تاکہ ایک نظر میں نظر پڑ جائے. بے یقینی بلند سوچوں کو سر نگو کرتی ہے اور عمل کی طاقت چھینتی ہے. بے یقینی بڑھتے قدم اکھیڑ دیتی ہے. بے یقینی جیتی ہوئی بازی ہرا دیتی ہے. بے یقینی ارادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. بے یقینی سوچوں کو بنجر کر دیتی ہے. بالآخر یہی بے یقینی آپ کو شکوک و شبہات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے یقینی کتنی خطرناک چیز ہے. تو پھر بے یقینی کا توڑ کیا ہے؟ اور وہ ہے یقین. وہ یقین جو کوہ ہمالیہ کے پاؤں ہلا دے, اکھاڑ دے, اسے متزلزل کر دے. یعنی یقین کی دولت اپنے اندر لانی ہے. یقین کی کہانی سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے فیکٹری کی مثال پیش ہے. آپ کی زندگی کی تمام تر کامیابیاں یا ناکامیاں آپ کی اپنی فیکٹری کی پیداوار ہیں. کون سی فیکٹری؟ دماغ کی فیکٹری, ذہن کی فیکٹری. اس فیکٹری کی پروڈکشن کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے دو مینیجر رکھے ہوئے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ यानी आपके जहन की फैक्ट्री को मैनेज कौन करता है? मैनेजर एक नहीं दो, कौन है वो? वो तो खुद दिमाग के अंदर ही सब हो रहा है जी। काफी करीब है आप जी। आप जी, आप जी पीछे से मैं हबीबा, आप जी, आप क्या सोच रहे हैं भाजी? ये लिख रहे हैं यकीन और बेयकीनी जी। चलिए पढ़ते हैं फिर। इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए आपने दो मैनेजर रखे हुए हैं। एक का नाम है मिस्टर फतह और दूसरे का है मिस्टर शिकस्त। जिस मैनेजर को गालिब कर लें आपको वो मिलेगा। मिस्टर शिकस्त का एक ही काम है। अब ये मिस्टर शिकस्त नाम के मैनेजर क्या करते हैं? नंबर एक, मनफी ख्यालात को तकवीत देना, हौसला शिकनी, नाकामी और बेहिम्मती। हर वक्त आपको लट डाउन करता है आपके अंदर का वो जज्बा कि आप कामयाब नहीं हो सकते, आपको तो शिकस्त ही होनी है। और बेहिम्मती जैसे ख्यालात की हौसला अफजाई करना। प्रोडक्शन का प्लान चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर के मुताबिक डिलीवरी की आखिरी तारीख सर पर तलवार की तरह लटक रही हो। फैक्ट्री की मसनूआत को फैलाने प्रमोट करने के चाहे कितने ही ज़बरदस्त मौके हों, आपकी सलाहियतों के ख़रीदार हेड ऑफिस में आपकी मसनूआत का चाहे कितनी ही बेताबी से इंतज़ार क्यों न कर रहे हों, आपकी मसनूआत का चाहे कितनी ही बेताबी से इंतज़ार क्यों न कर रहे हों, मिस्टर शिकस्त आपकी फैक्ट्री के तमाम मुलाज़मीन तक ये मनफी प्रोपेगंडा फैलाएंगे। आज तो ये मुमकिन नहीं है, ये तो हो नहीं पाएगा, मुश्किल मुश्किल, नामुमकिन नामुमकिन, वगैरह वगैरह। सच है कि नहीं? और यकीन कीजिए, आज उम्मत होने के नाते भी बाज़ लोग हमारी हिम्मतें तोड़ते हैं। आजकल दुख की बात है, वैसे तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ तो मुझे खुद भी कभी मौका मिला, लेकिन अंदाज़ा होता है मीडिया के ज़रिए से बाज़ ऐसे लोग तबसरे करते और अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते नज़र आते हैं जो कहते हैं पाकिस्तान डूब गया, ख़त्म हो गया, खा गए, लूट गए, कुछ नहीं होगा, बर्बाद, और तुमने तो कभी संवरना ही नहीं। सुनी हुई ये बातें? ये हैं वो लोग जो ये कहते हैं ना, मुसलमान ख़त्म, नाम भी गया, अब ये सब ख़त्म होगा। वो ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा मिस गाइड करते हैं, हिम्मत तोड़ते हैं, कुछ कर ही नहीं सकती आप। इसके बरक्स देखिएगा दूसरी तरफ मिस्टर फतह का काम क्या क्या है, लिख लें। हौसला बढ़ाना, मुस्बत पैगामात की इशात करना, तवानाई के इंजेक्शन लगाना, तारीफ और हिम्मत अफजाई के मीठे बोल बोलना, और कर दिखाने की लगन पैदा करना। जब मिस्टर फतह एक्शन में हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। बात वाज़े? तो अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल दें। ये जो मैनेजर है ना शिकस्त वाले, इनको निकाल दें, ले ऑफ कर दें। हमेशा कहें मैं कर सकती हूँ, इट्स क्वाइट पॉसिबल। वो कहते हैं ना कि हर इम्पॉसिबल के अंदर से पॉसिबल निकलता है। यस इट्स पॉसिबल। आपके ख्याल में किन साहब की प्रमोशन होनी चाहिए और किन साहब को गेट की राह दिखानी चाहिए, शिकस्त या फतह? फतह वाले की प्रमोशन और शिकस्त वाले को छुट्टी करा दें। आपका जवाब तो सही है, लेकिन जब आप अमलन फैसला कर रहे होते हैं तो ताले बेचारे मिस्टर फतह की ज़ुबान पर लगवाए जाते हैं, ऐसे ही, और प्रमोशन पे प्रमोशन देते रहते हैं आप मिस्टर शिकस्त को। याद कीजिए, शुरू में मिस्टर शिकस्त एक मामूली वर्कर था जिसे अब आपने फैक्ट्री मैनेजर का दर्जा दे दिया। ये भी ट्रू है, समझ आ गई ये बात ना? शुरू में शिकस्त नाम का कोई नहीं होता मैनेजर, ये हम इसको खुद बना लेते हैं। पहली नाकामी पे हिम्मत टूटी, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर कहते हैं अब बस इन्हीं का हुक्म चलेगा। इसलिए कभी भी गिरने वालों को गिरता नहीं छोड़ना चाहिए, उनको हाथ थाम कर पकड़ लीजिए। ज़रा सोचिए, जब किसी अहम जगह पर आपका इंटरव्यू हो, या बॉस के साथ अहम रिपोर्ट पर डिस्कशन हो, या किसी कस्टमर के सामने सेल्स प्लान रखना हो, तो आपके अपने जहन की अपनी फैक्ट्री में किस तरह मिस्टर शिकस्त मिस्टर फतह को चुप करा देते हैं। यानी अमूमन हम नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कामयाबियाँ चाहते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर आपके जहन में होती है, तो फिर इस फैक्ट्री का चार्ज किसके हाथ में होना चाहिए, मिस्टर फतह के या शिकस्त के? बताइए। फतह के। मिस्टर फतह जैसा यकीन जहां पहाड़ों को हटा सकता है, वहां मिस्टर शिकस्त की ज़रा सी बेयकीनी ख्वाबों के घरों को मलिया मेट कर सकती है। यकीन आपकी कामयाबी के लिए थर्मोस्टेट की हैसियत का हामिल है। ये जुमला लिख लें। थर्मोस्टेट क्या? हीट इतने पे सेट कर दें। थर्मोस्टेट जो होता है ना, उस पर आके आपको पता है कि एसी भी रुक जाता है और हीट भी रुक जाती है, फिर उसी को बस मेंटेन करते हैं। जिन लोगों ने ज़िंदगी में कम हासिल किया, रिसर्च करके देख लें, उन्होंने ज़िंदगी में खुद पर यकीन भी कम कर दिया है। सारा दिन खुद को दबाने वाली सोचों की जंजीरों से निकलिए और ख़ुद को उठाने वाली सोच पे भी ज़रा कान धरिए। अपने अंदर से उठती सिसकती आवाज़ों को सुनिए। ये आवाज़ें आपको कब से यकीन दिलाना चाह रही हैं कि आप कितने बासलाहियत हैं, आप में क्या कुछ छुपा है। खुदा के लिए अपने अंदर की असल शख्सियत को बनने, संवरने, उभरने और निखरने का मौका दीजिए। देना चाहते हैं? कितने लोग सोचते हैं कि हम सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तो फिर दूसरी इसकी सीढ़ी क्या हुई? यकीन, आई विल डू। पहली क्या थी? बुलंद सोच। दूसरी क्या है? तो तीसरी क्या होगी? अब आप सोचिए। अमल जी, और कुछ किसी के जहन में आया इससे मुख्तलिफ? तीसरी चीज़ है चैलेंज। चैलेंज कर दे लोगों को, फिर लोग आपसे खुद ही करा लेंगे। सर उठा के जीने, अपनी शख्सियत को निखारने के लिए तीसरी ज़रूरी चीज़ है चैलेंज। क्या आप अपनी ज़िंदगी में कोई बामानी चैलेंज रखते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई बामानी चैलेंज है? अगर चैलेंज के बगैर शख्सियत बनती और निखरती नहीं, तो चैलेंज से बचकर भाग जाने वाले, छुप जाने वाले, रास्ता बदल जाने वाले, आंखें चुरा लेने वाले लोगों की शख्सियत क्या खाक नशोनुमा पाएगी? चैलेंज के बगैर काम नहीं होते। बाद में देखें ना, सोई हुई सलाहियतें भी जाग जाती हैं और बंदे की, जब उसको चैलेंज करता है और तुमने कोई नहीं करना, कहता है अच्छा करके दिखाता हूँ, फिर देखिए जो आप दौड़ते हैं। कोई कहता है तुम्हारा घर तो कभी साफ़ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, आप कहते हैं अच्छा ये कहते हैं आज करके दिखाती हूँ, फिर उस दिन जो सफाई होती है किसी का ये एक्सपीरियंस? चैलेंज ले, खुद को चैलेंज करें। हम सभी भगोड़े हैं, हम एतराफ़ नहीं करते, मानते नहीं। क्यों? इसलिए कि मान जाने से अना को बड़ी ठेस पहुँचती है। मगर मैं मानता हूँ हज़ारों लोगों को मोटिवेशन की चाबी देने वाली किताब शाबाश तुम कर सकते हो। लिखने के बाद भी आप शायद नहीं मानेंगे कि मैं भागता रहा हूँ चैलेंजेस से, मुश्किलात से। क्या आप मानेंगे कि दूसरों को डटे रहने का हौसला देने वाला कई बार डटे रहने की बजाय फरार होने में सुकून ढूंढता रहा है? यानी अपने बारे में कह रहे हैं, यानी किसी को ये कह देना ना शाबाश, जो उसके अंदर ताकत भरता है। चार लफ्ज़ हैं और मैंने खुद ये आजमा के देखा, कभी भी कोई बहुत अच्छा काम, सारी हर वक्त ही अच्छे काम करते हैं, ईमेल्स आती जाती हैं, तो कम से कम जो चार लफ्ज़ लिखूँ वो यही लिखती हूँ शाबाश। बस मुझे लगता है इससे उनके अंदर जो जान पड़ जाएगी ना, वो इनको और काम करने के काबिल कर देगी। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम खुद को सोचें, हौसले दें, हिम्मत दें, चैलेंजेस करें डटे रहने के। बस लोग क्यों ऐसे करते हैं? आखिरी पैराग्राफ है, क्या आप मानेंगे कि दूसरों को डटे रहने का हौसला देने वाला कई बार डटे रहने की बजाय फरार होने में सुकून ढूंढता रहा है? पता है क्यों? बात बड़ी आसान सी है। डटने की बजाय भागना आसान है। भागने से सारी तकलीफें छट जाती हैं, हमारे तहफ्फुज़ को कोई ख़तरा लाहक नहीं रहता। इसके बरक्स चैलेंज का मुकाबला करने की सूरत में हमें बेआरामी को गले लगाना पड़ता है। ये लिखें, इन सारी बातों में से जो अंदर निकला ना, आराम छोड़ना पड़ेगा। बेआराम करेंगे तो जन्नत मिलेगी। अपने खौफ की आंखों में आंखें डालनी पड़ती हैं, खुद को टेस्ट करना पड़ता है। इससे कहीं आसान है कि तसव्वुराती खौफ के पहाड़ खड़े कर दिए जाएं जिन्हें उबूर करना मुश्किल दिखाई देता है। जब इन तसव्वुराती पहाड़ों के बारे में इतनी कसरत और खुलूस से सोचना शुरू कर दिया जाए तो वो हकीकी रुकावटों का रूप धार लेते हैं। समझ आ रही? ये कौन सा इखलास है? रुकावटों के मामले में बड़े मुखलिस हैं, यानी हमें बड़ा यकीन है कि मेरी रुकावटें बड़ी जेन्युइन है, मेरे सब रीजंस बड़े जेन्युइन है, ये मुराद है। सर उठा के जीने के लिए चैलेंज लेना ज़रूरी है। जितना बड़ा चैलेंज होगा इसे पिछाड़ने की खुशी भी इतनी ही ज़्यादा होगी। चैलेंज से घबराइए नहीं, आगे बढ़कर इसका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि ये चैलेंज ही तो है जो आपको आपसे मिलवाता है, छुपी सलाहियतों को निखारने का मौका देता है, खुद एतमादी सिखाता है और सबसे बढ़ के खुद एतमादी में इजाफे का बायस बनता है। सच है कि नहीं? तो फिर क्या करें? तो फिर खुद से वादा कीजिए कि सर उठा के जीना है, सोच को बुलंद रखना है, यकीन को कामिल करना है और अपने लिए चैलेंज ढूंढना है। अपने लिए हर रोज़ एक नया चैलेंज अपने लिए हर रोज़ एक नया चैलेंज रखने से ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है। हर चैलेंज को मात देने से ही यकीन अफरोज होता है, सोच खुद ब खुद बुलंद से बुलंद तर हो जाती है और चैलेंजेस से खेलना ज़िंदगी का मामूल बन जाता है। फिर आपको ख़ुद भी नहीं पता चलता कि कब दुनिया आपको सर उठाकर जीने के लिए अपना रोल मॉडल समझने लगती है, यानी कल के दबे हुए लोग आज दूसरों को राह दिखाने वाले बन गए। तो ये था आपका मेरा ख्वाब। हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से नहीं छोड़ देना। ये पैगाम है हमारा एक दूसरे के नाम कि अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करो। और आप इन सारी चीज़ों को आप देखिए, हमने तो इसको पर्सनल ग्रूमिंग में किया ना, आप देखें कि कुरान और हदीस इसी बात का सबक देते हैं। मुझे पढ़ने के दौरान कई बातें याद आ रही थी, आयतों की वाक्यात, लेकिन मैंने सोचा कि टेम्पो यही रहे तो बेहतर है। अब आप कुछ बोलिए, क्या समझते हैं? जी आप फरा जी। जी शाबाश।
और फिर ये कि फिर मुझे अल्लाह ताला की कलमाए को उन्होंने कि उनके पास वो अल्लाह ताला कलमाए को कहते तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। तो मैं अल्लाह से यही मांगती हूँ कि मुझे मुझे तो लग रहा है मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपकी खातिर ये काम कर रही हूँ और आप मुझे पता ये कर सकते हैं कि आप।
जी शाबाश। आपने जो बात सोची वो मेरे भी जहन में बीच में आई थी कि ये तीन स्टेप्स है ना, लिखें ज़रा आपको, मैं इसको थोड़ा सा इस्लामिक स्नैरियो में दिखाती हूँ। बड़ी सोच, यकीन और चैलेंज, इन तीनों को लिखिए ज़रा ऊपर नीचे, एक लफ्ज़ को एक जगह लिखें। इस्लाम हमें बड़ी सोच क्या देता है? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फलाह क्या होती है? दुनिया और आखिरत की कामयाबी। दुनिया में अल्लाह की रज़ा के साथ मुसलमान जिए और आखिरत में जन्नत और अल्लाह की रज़ा पाएँ। तो बड़ी सोच दी है इस्लाम ने हमें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। चलिए आगे, यकीन। यकीन किस पर है? बंदा मोमिन का यकीन अल्लाह पर होता है। ए अल्लाह, मैं एक कमज़ोर सा तिनका हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन तेरे यकीन पर काम करती हूँ। जैसे आपने फरा जो बात कही ना, उसको देखकर मेरे जहन में एक मिसाल याद आई, एक आज की बात में भी ये हुई भी है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड। बेल देखी है कभी आपने, जो जमीन पे फैलती है ना, छोटी सी होती है, पाँव में आएगी तो क्या होगा, मसली जाएगी ना। और दरख्त भी देखा होगा, मजबूत होता है ना। कोई बेल जब अपनी ज़ात पे होती है तो ज़मीन पे बिछती है, बकरियां चर जाएं, लोग उसको खा जाएं, कीड़ा लग जाए। और जो ज़मीन पे बेल होती है ना, उस पर अगर कद्दू टिंडे लग भी जाए ना, तो अमूमन नीचे से दागी हो जाते हैं। आप उस बेल का एक सिरा पकड़कर ऊपर किसी चीज़ से बांध देते हैं, दरख्त की शाख से या छत से, तो क्या होता है, वो बेल पूरी छत बन जाती है। मैं और आप क्या हैं, कमज़ोर बेलें हैं, और अल्लाह का सहारा क्या है, मजबूत करता है। कुरान की कोई याद आई है आपको? जी शाबाश, वो भी है, वा तसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन, उससे पीछे एक आयत जी, قد تبين رشد من الغي قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. آیت الکرسی کے فوراً بعد کی آیت ہے، یہ جو عروة الوثقى ہے نا، یہ اللہ کا ہاتھ، یہ تھام لینا تو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی صلاحیتیں اللہ بڑھاتا ہے۔ میرے اور آپ میں کیا طاقت ہے، ہمارا یقین اللہ پہ ہے۔ وہی مثال آپ کو دی ہے کہ ایک لکھیے، اپنے نوٹس میں لکھیے ذرا بند، اب اس کے آگے ایک زیرو لگائیں، کیا بنا، ایک اور لگائیے، کیا بنا، پھر کیا لگائیے، لگاتے جائیے، بولتے جائیں، مجھے ایک زیرو لگائے، رونچی واسطے سب بولے، ایک سے دوبارہ شروع کریں، آگے ایک اور بول دیں لاکھ۔ اب آپ ون کو گرا دیں، اس کو کاٹ دیں، کیا بنا، ایک لاکھ کیا بن گیا، زیرو۔ ایک لاکھ ضرب زیرو کیا ہوگا، زیرو ہوگا نا۔ اب یہ ایک کیا ہے، آپ کھڑے ہوئے اللہ کے راستے میں بڑی سوچ لے کر، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ نے اپنی مدد کا ایک زیرو لگایا، کیونکہ اللہ جتنی بھی آپ کی مدد کرے گا نا، وہ اس کی طاقت کے مقابلے میں زیرو ہے۔ آپ کھڑے رہے، اللہ نے ایک اور لگا دیا، آپ کھڑے رہتے ہیں نا، اللہ آپ کی مدد کرتا جاتا ہے، تو آپ زیرو سے دس، دس سے سو، سو سے ہزار، پھر دس ہزار، پھر لاکھ، پھر دس لاکھ بنتے جاتے ہیں۔ شرط ایک ہی ہے کہ آپ کھڑے رہیں، اور آپ گر جائیں، چھوڑ دیں اس کام کو، تو اللہ کی سب مدد آپ کے حق میں بیکار ہوگی۔ چلیے تیسری چیز کیا تھی، چیلنج۔ اللہ نے ہمیں کیا چیلنج دیا، جی شاباش، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، ٹھیک ہے جی، اور شریعت کے دائرے میں رہو، ٹھیک ہے جی، نفس، جہاد بھی نفس، شاباش، گڈ جی، نیکسٹ، زندگی ایک چیلنج ہے،
نیک عمال کا کہا ہے کہ اگر جو مشکلات سے لڑ کے نیک عمل کرے گا،
مقابلہ کرنا جی، اور امی بیبا، دنیا میں رہتے ہوئے تیاری وہاں کی جی، اور آپ،
نفس کے ساتھ
جہاد جی، آپ، گناہوں سے جہاد۔ دیکھیے ڈے ون پہ ایک ٹیمپو ہو گیا تھا، شیطان اور ابلیس، جس کو آپ کہیں گے، ابلیس نے کیا کہا تھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، سورۃ الاعراف۔ یہ جو شیطان کو کھلی چھٹی مل گئی تھی نا کہ جاؤ تو ان سب کو بہکا لے، لیکن تیری بات جو ہے وہ مخلص لوگ نہیں مانیں گے، تو ہم سب کے لیے جنت میں جانا اور شیطان کے چنگل سے خود کو بچانا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اللہ اجرنی من النار، کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پیغام کو اپنے دل پر لینے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ ادھر بریک ہے ابھی ہمارے پاس۔